श्रील प्रभुपाद अक्सर इस मुकुंद माला स्तोत्र के श्लोकों का प्रमाण अपने भगवत गीता के तात्पर्य में या भागवतम के तात्पर्य में अक्सर कई बार देते थे। हरे रंग की किताबें, हरे रंग की, उस तरफ भागवतम के उस तरफ था। और प्रभुपाद जी कई बार इसको अकेले में भी गुनगुनाते थे। आपको बहुत ही संक्षेप में एक परिचय दे दूं राजा कुलशेखर का, आप शायद सभी भक्त अधिकांश जानते ही होंगे, फिर भी जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए एक संक्षेप में परिचय ऐसा है कि आज से लगभग 800-850 वर्ष पूर्व दक्षिण भारत के केरला राज्य में एक बहुत बड़े महान राजा हुए, राजा कुलशेखर। श्री रंगनाथ जी के 11 महान विशुद्ध भक्त, जो 11 आलवर कहलाए जाते थे, उन 11 आलवरों में से एक थे सावित्रीनाथ, और उन सावित्रीनाथ की परंपरा में ये राजा कुलशेखर आते थे। ये राजा कुलशेखर परम भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही महान भक्त थे। जैसे अम्बरीश महाराज नवविधा प्रकार की भक्ति के द्वारा भगवान की सेवा में सदैव व्रत रहते थे, सदैव प्रभु को रिझाने में रहते थे, तो उसी प्रकार ये राजा कुलशेखर भी सदैव भगवान कृष्ण की भक्ति किया करते थे। विशेष करके वो बाल कृष्ण की सेवा, आज भी भारत में हमारे गौड़ीय वैष्णवों की परंपरा को छोड़कर आप देखोगे तो भारत में अधिकांश जहां जहां कृष्ण भक्ति है या जिन मंदिरों में या जिन संप्रदाय के मंदिरों में कृष्ण भक्ति आप देखोगे तो बाल गोपाल के स्वरूप में। आप केरला में यदि गुरुवायूर जाओगे तो गुरुवायूर में वैसे ठाकुर जी का स्वरूप है चतुर्भुज, पर वहां सेवा का भाव जो है वो बाल गोपाल के स्वरूप में है। उडुपी कृष्ण में तो विश्व का, संसार का पूरा एक विशेष मंदिर है कि वो मंदिर में आप देखोगे तो बाल कन्हैया का विशेष रूप है कि हाथ में मथनी है, दही मथने की मथनी है, जो नंद भवन में जो ठाकुर जी का स्वरूप था वो स्वरूप की वहां सेवा सिद्ध की जाती है। तो ऐसे ही ये राजा कुलशेखर बहुत ही महान और शुद्ध भक्त थे बाल कृष्ण के। तो एक बार उस राजा कुलशेखर को रात्रि में भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल गोपाल के सुंदर स्वरूप के दर्शन कराए, कुछ क्षण के लिए, 2-5 क्षण 10 क्षण जो भी हो। तो उन्होंने जब रात्रि में बाल कन्हैया के स्वरूप का जब दर्शन किए उन्होंने, तो उन्होंने दूसरे दिन सवेरे अपनी राज्यसभा में, अपनी असेंबली में उन्होंने एक विशेष सभा बुलाई जिसमें अपने समस्त रानियां, राजकुमार, सारे मंत्री, सामंत, सरदार सभी को बुलाया और उन्होंने एक विशेष घोषणा की कि मैं आज से, इसी क्षण से मैं ये राज्य को त्याग रहा हूं। संपूर्ण राजमहल, संपत्ति, सेना, लश्कर, हाथी, घोड़े, नौकर चाकर, दास दासियां सभी के साथ मैं अपने साथ कुछ भी नहीं लेना ले जाना चाहता हूं। मैं अभी इसी क्षण से इस राज्य का त्याग करना चाहता हूं। और उन्होंने राज्य कारोबार अपने पुत्र को सौंप कर वो निकल पड़े भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए श्री रंगनाथ जी की ओर। तो ये प्रमाण है कि उन्होंने सचमुच भगवान के दर्शन किए। कई बार कई लोग मिलते हैं और हमसे ये कहते हैं, हमें भगवान सपने में आते हैं, हम भगवान से बात करते हैं, हमारा गोपाल जी ये कहता है, हमारा गोपाल जी बड़ा नटखट है। जिनके घरों में बाल गोपाल की सेवा होती है ये ऐसी बातें करते हैं अक्सर। गोपाल जी करते भी होंगे ऐसा, हम नहीं कह सकते कि नहीं करते होंगे, पर अधिकांश लोग ये कहते हैं कि गोपाल ऐसे कहता है, गोपाल ऐसे करता है। पर शास्त्रों से या इतिहास से हमें ये जानने मिलता है, प्रमाण मिलता है कि जिनको भगवान ने दर्शन दिए हैं या जिनके साथ ठाकुर जी का साक्षात्कार या तादात्म्य एक रूप हो जाता है, उनके हृदय में भक्ति उजागर होती है, शुद्ध भक्ति। और शुद्ध भक्ति का प्रमाण है ज्ञान और वैराग्य, क्योंकि भक्ति देवी के दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। तो जिनके हृदय में भक्ति है या जिनको भगवान ने दर्शन दिए हैं, आज आप शास्त्र में देखिए वो प्रभु के मार्ग पे चल पड़ा है वो व्यक्ति, इसके कितने प्रमाण हैं, कितने प्रमाण। आप भारत के जितने भी स्त्री पुरुष संतों के आप चरित्र पढ़ोगे, आप देखोगे तो उन्होंने प्रभु भजन के सिवा बाद में कुछ नहीं किया। जिन जिनको प्रभु का साक्षात्कार हुआ उन्होंने संसार कार्य बाद में किया ही नहीं, कोई संसारी कार्य उन्होंने नहीं किया, यहां तक कि अपने पत्नी बच्चों की भी देखभाल करना छोड़ दिया। तो राजा कुलशेखर इतने महान भक्त थे, तो वो राजा कुलशेखर ने जब ज्ञान और वैराग्य जब हृदय में उत्पन्न होता है तो श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि एक शुद्ध भक्त में 26 प्रकार के गुण आते हैं, 26 क्वालिटीज ऑफ प्योर वैष्णव डिवोटीज, 26 गुण उनमें उद्भवित होते हैं। उन 26 गुण में से एक गुण यह है कि वो भक्त जो है कवि बन जाता है, वो अपनी नई नई रचनाएं करते हैं। जैसे महाराष्ट्र के संत तुकाराम जी हुए हैं तो उन्होंने हजारों अभंगों की रचना की, गुजरात के नरसिंह मेहता हुए उन्होंने हजारों भजन गाए, राजस्थान की मीराबाई हुई उन्होंने हजारों भजन गाए। ये भक्तों में एक लक्षण होता है कि जो भक्त भक्त बन जाता है उनमें एक कवि जन्म ले लेता है और वो अपने स्व अनुभूति के अनुसार वो प्रभु की स्वरूप के, प्रभु के लीलाओं के, प्रभुओं के गुणों के, प्रभुओं के धाम के, प्रभु के परिकरों के, उनके भक्तों के चरित्र के गुणगान करने लगते हैं, वो उनमें अपने आप उद्भवित होता है। कथा कीर्तन श्रवण स्वाध्याय ग्रंथों का अध्ययन, ये देखिए थोड़ा सा हजम करने में मुश्किल है परंतु ये सब एक माहिती का माध्यम है, आपको एक माहिती मिलती है, इंफॉर्मेशन जानकारी, परंतु ज्ञान जो है ना वो अंदर से उद्भवित होता है, ज्ञान कभी भी बाहर से नहीं आता है। हमें माहिती मिलती है, जानकारी मिलती है। अभी अगर आज मैं ये कह दूं कि भागवतम से हमें माहिती मिलती है, जानकारी मिलती है, भागवतम से ज्ञान नहीं मिलता, 90-95% लोगों को एकदम क्रोध आ जाएगा, अंदर उबलने लगेगा अग्नि, ये मूर्ख है, ये घमंडी है, ये पाखंडी है। लेकिन भागवतम का वास्तविक ज्ञान हमारे अंदर आया है वो हमारे जीवन के आचरण से, जब हम भागवतों जैसा आचरण करेंगे तब कहा जाएगा कि वो जो माहिती है, वो जो इंफॉर्मेशन है, जो जानकारी है, वो हमारे अंदर अब ज्ञान स्वरूप में उद्भवित हुई है, इज रिवेलिंग इन फॉर्म ऑफ नॉलेज, वो ज्ञान स्वरूप में अब उद्भवित हो रहा। आप देखोगे तो ठाकुर भक्ति विनोद जी के जितने भजन हैं हमारी गौड़ीय परंपरा में, तो ठाकुर भक्ति विनोद जी के प्रत्येक भजन या प्रत्येक भजनों के जो पंक्तियां हैं वो एक एक पंक्तियां भागवतम के एक एक श्लोक के साथ मिलती हैं। वो तो हमारे लिए संशोधन का विषय है कि ठाकुर भक्ति विनोद जी का ये भजन, ये कड़ी, ये पंक्ति भागवतम के कौन से श्लोक से है, तो हमें भागवतम पढ़ना पड़ेगा। और जब हम भागवतम पढ़ेंगे तो भागवत जैसा आचरण करेंगे, और जब भागवत जैसा आचरण करेंगे तो भक्ति आएगी, और जब भक्ति आएगी तब ज्ञान और वैराग्य आएगा, और वही भागवतम हमारे अंदर उद्भवित होगा, कथा के रूप में, कविता के रूप में, उपदेश के रूप में, हमारे व्यक्तिगत जीवन के आचरण के रूप में, इसको कहते हैं ज्ञान। तो इसी प्रकार से ये राजा कुलशेखर ने अपने जीवन में एक बहुत सुंदर, ये हमारे मंदिरों में मिलता है ये ग्रंथ, बहुत सुंदर पढ़ने जैसा ग्रंथ है मुकुंदमाला स्तोत्र, ये राजा कुलशेखर ने 53 श्लोकों की रचना की, अर्थात हम यूं कह सकते हैं एक 53 पुष्पों की माला मुक्ति प्रदाता मुकुंद को उन्होंने अर्पित की है ना। कृष्ण कहता है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम उपहतम अश्नामी प्रयतात्मना, कि भक्त अपनी तरफ से, अपनी ओर से कुछ भी दे सकता है, पत्र पुष्प फल फूल जल, परंतु वो बिल्कुल श्रद्धा भक्ति विश्वास प्रेम के साथ अर्पण करे, चाहे वो एक पत्ता ही क्यों ना हो पेड़ का। यदि कोई बहुत गरीब है कुछ नहीं दे सकता है भगवान को, एक पत्ता तो कहीं से भी तोड़ के दे सकता है कि प्रभु ये लीजिए एक पत्ता मेरी तरफ से, पर उस पत्ता देने में उसे विषाद नहीं होना चाहिए। लोगों ने इतने सुंदर गहने दिए हैं, इतने सुंदर लाख लाख रुपए के कपड़े दिए हैं, मंदिर में इतना डोनेशन दे रहे हैं, और मेरा ये पत्ता एक तुच्छ पत्ता नहीं, ऐसा है ना। द्रौपदी का एक पत्ता, एक अन्न का दाना खाकर विश्वामित्र के साथ आए हुए 10,000 शिष्यों का पेट भर गया। इतना ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड का पेट भर गया उस दिन, जिस दिन दुर्योधन ने कपट से भेजा था। पूरे ब्रह्मांड का पेट भर गया केवल एक एक अन्न के एक दाने से, या कोई कहता है साग के पत्ते से, जो भी हो, लेकिन पूरे ब्रह्मांड के जीवों का उस दिन पेट भर गया आकंठ तक, यहां तक, और लोग डकारने लगे, उनको लगा एसिडिटी हो गई ज्यादा खाने से। तो आइए देखते हैं, हम मुकुंद माला स्तोत्र को पाठ करें, थोड़ा लंबा चौड़ा तात्पर्य है, पर ये जो इसका तात्पर्य, ये जो श्लोक है, वो श्लोक हम सब भक्तों के लिए हैं। हम में से कई भक्त ऐसे होते हैं जो पहले नास्तिक थे, और फिर किसी कारण से, कोई दुर्घटना से, कोई दुख से, कोई विपदा से, कोई आपत्ति से, कोई संकट से भक्त बना। तो कोई ऐसे भी होते, चलो हरे कृष्ण मंदिर रविवार जाते हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन आते हैं, थोड़ा मेरा बिजनेस भी बढ़ेगा। तो अर्थार्थी, कोई ज्ञानी, कोई जिज्ञासु, हम सब भक्तों की इसमें अवस्था का वर्णन हुआ है। और ये सब भक्तों की अवस्था का वर्णन करने के बाद राजा कुलशेखर हमें एक सुंदर उपदेश देते हैं कि हमें वास्तव में कहां जाना चाहिए, हम भक्तों का क्या लक्ष्य होना चाहिए। जब हमने अब ये इन सत्संग सत्रों में जाना शुरू कर ही दिया है, चार नियमों का पालन, 16 माला जप करना शुरू कर ही दिया है, और कंठी तिलक माला आदि धारण कर ही लिया है, तो हमारा लक्ष्य क्या है? तो विशेष उपदेश यह है कि हम भक्तों का लक्ष्य क्या है। परंतु हम सब कहीं ना कहीं इस विशेषतम, इस गुरुतम उद्देश्य, जो हमारे जीवन का सबसे बड़ा, सबसे मुख्य लक्ष्य है, भगवान की विशुद्ध भक्ति, भगवान के चरण कमलों की सेवा, तो हम कहां रुके हैं, हम कहां अटके हुए हैं, हमारे और कृष्ण दर्शन के बीच में आड़े क्या है। हम सबको ये मन में एक प्रश्न है, हम इतना जप कर रहे हैं, इतना एकादशी पालन कर रहे हैं, चार नियमों का पालन कर रहे हैं, कृष्ण दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं? और कई बार सुन चुके हैं कि एक बार शुद्ध नाम लेने से नीर अपराध, वैष्णव अपराध, सेवा अपराध, धाम अपराध, हाँ, ये सब अपराधों से रहित एक बार शुद्ध कृष्ण नाम बोले तो कृष्ण दर्शन देंगे। तो कृष्ण दर्शन क्यों नहीं देते? आज सुबह तो मैंने किसी वैष्णव की निंदा नहीं की, कल भी नहीं की थी, परसों भी नहीं की थी, कल भी नहीं करूंगा, परसों भी नहीं करूंगा, एक हफ्ता पहले नहीं की थी, एक हफ्ता बाद भी नहीं करूंगा, और मैंने सेवा में भी कोई कमी नहीं रखी, अभी आज मैं बोलूंगा हरे कृष्ण, तो दर्शन हो जाना चाहिए ना, फिर भी क्यों नहीं हो रहा है? तो थोड़े इस हरे कृष्ण शुद्धता से जरा और अधिक अच्छा जपिए, तो जब वो मथेंगे ना हृदय को, तो पता चलेगा कि चार पांच दिन तो ठीक गए, या चार पांच घंटे भी, या चार पांच मिनट भी ठीक ठीक गई हरे कृष्ण, लेकिन पांचवी सेकंड में, या पांचवें घंटे में, या पांचवें दिन में हृदय में कैसे बुरे विचार, कैसी वासनाएं, कैसे अपराध उद्भवित होते, बाहर आने लगते हैं, तो वो बहुत कुछ मसाला अंदर पड़ा है, गंदगी पड़ी है, वो पूरा साफ नहीं हुआ। ये तो हम केवल गले से, कंठ से, या जिह्वा से बोल रहे हैं हरे कृष्ण, एकदम शुद्ध नाम, स्पष्ट नाम। लेकिन ठाकुर भक्ति विनोद जी जैव धर्म नाम के ग्रंथ में कहते हैं कि यदि हरे कृष्ण 16 शब्दों का जो महामंत्र है, यदि वो अस्पष्ट भी उच्चारित हो तो कोई बात नहीं, परंतु दीर्घ काल से हमने अपने विचारों को, अपनी कामनाओं को, अपनी वासनाओं को निर्मूल कर दिया है, या निर्मूल करने का कठोर प्रयास है, ध्यान दीजिए, अपनी इच्छाओं को, अपनी वासनाओं को निर्मूल करने का कठोर प्रयास होता है, आसान प्रयास से कुछ नहीं होता, कठोर प्रयास करना पड़ता है। यदि वो किया है उस कठोर प्रयास के साथ, फिर इसके बाद में कोई अपराध नहीं किया है, नाम अपराध, वैष्णव अपराध, धाम अपराध, सेवा अपराध, और फिर जो नाम की शुरुआत होती है नामाभास, तो वो नामाभास स्वरूप में ही यदि वो अस्पष्ट भी हो, विशेष करके हमारे इस्कॉन संस्था में विदेशी भक्त होते हैं, सभी विश्व के हर कोने के भक्त आते हैं, वो शायद हमारी तरह, भारतीयों की तरह नहीं भी बोल सकते हैं हरे कृष्ण, वो बोलेंगे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु, ऐसे चाइनीज लोग शायद ऐसे भी बोलते होंगे, तो हरे कृष्णा ई क्या कृष्णा, शायद हमारे रशियन भक्त ऐसा भी बोलेंगे, वो ख और त्र का अधिक उच्चारण करते, ख और त्र रशियन भाषा में, तो ऐसे भी बोलेंगे हरे कृष्णा प्रखभूजी आई वॉन्ट टू सी गुरु मखराज, ऐसे भी हो सकता है। तो वो ठाकुर भक्ति विनोद जी कहते हैं ऐसे अस्पष्ट उच्चारणों से कोई फर्क नहीं पड़ता, हृदय में पवित्रता, हृदय में शुद्धता होनी चाहिए, तो हृदय की शुद्धता से जो नाम लिया जाता है वो शुद्ध नाम है। तो इसलिए राजा कुलशेखर हमें ये शिक्षा दे रहे हैं, हम लोग थोड़ा सा श्लोकों का उच्चारण करके, तात्पर्य का पाठ करके राजा कुलशेखर की शिक्षाओं के ऊपर ध्यान देंगे। नाहं वंदे तव चरणारयोर्द्वंद्व मद्द्वंद्व हेतुः, नाहं वंदे तव चरणयोर्द्वंद्व मद्द्वंद्व हेतुः, कुंभी पाकं गुरुम अपिम हरि नारकं नापनेतुम, कुंभी पाकं गुरुम अपि हरे नारकं नापनेतुम, रम्या राम मृदु तनु लता नंदने नापिरन्तुम, रम्या रामा मृदु तनु लता नंदे नापिरन्तुम, भावे भावे हृदय भवने भावयेयं भवन्तम्, भावे भावे हृदय भवने भावयेयं भवन्तम्, नाहं वंदे तव चरणयोर द्वंद्वं मद्द्वंद्वं हेतुः, कुंभी पाकं गुरुमपि हरि नारकं नापनेतुम, रम्या राम मृदु तनु लता नंदे नापिरन्तुम, भावे भावे हृदय भवने भावयेयं भवन्तम्, कोई बोल सकता है, कोई नंद प्राण प्रभु आपको तो कंठस्थ है, देखिए पढ़े, नाहं वंदे तव चरणयोर द्वंद्वम द्वंद्वम हेतुः, कुंभी पाकं गुरुमपि हरे नारकं नापनेतुम्, रम्या राम मृदु तनु लता नंदे नापिरन्तुम्, भावे भावे हृदय भवने भावयेयं भवन्तम्। माताओं में से कोई पढ़ सकता है? वंदे तव चरणयोर द्वंद्वम द्वंद्वम हेतुः, कुंभी पाकं गुरुमपि हरे नारकं नापनेतुम्, रम्या राम मृदु तनु लता नंदे नापिरन्तुम्, भावे भावे हृदय भवने भावयेयं भव, न नहीं अहम मैं वंदे प्रार्थना करता हूँ तव आपके चरणयो चरण कमलों की द्वंद्वम युगल दोनों अद्वंद्व द्वैत से मुक्ति हेतु के लिए कुंभिपाकम وہاں لوگ جہاں کھولتا تیل ہے. گرم اتینت پرچنڈ اپی بھی ہرے ہے ہری نارکم نرک نہ نہیں اپنے تم بچنے کے لیے رمیا اتینت سندر راما رمنی مردو مردو تنولتا لتا کے سمان شریر والی نندنے سورگ کے رمنی ادھیان میں نہ اپی نہ تو رنتم بھوگ کرنے کے لیے بھاوے بھاوے وبھن پنر جنموں میں ہدیا میرے ہدی کے بھونے گھر کے بھیتر بھاویم میں ایکاگرتا دھارن کر سکوں بھونتم آپ میں. انواد ایوم تاتپریہ شری شریمد ابھے چرناروند بھکتی ویدانت سوامی شیلا پربھوپاد مہاراج کے دوارا. شیلا پربھوپاد کی انواد اس پرکار ہیں. ہے بھگوان ہری میں نہ تو بھوتک سنسار کے دویتوں سے نہ ہی کمبھی پاک نرک کے دارون کشٹوں سے اپنے آپ کو بچائے جانے کے لیے آپ کے چرن کملوں کی وندنا کر رہا ہوں. نہیں میرا ادیشیہ نندن کانن میں نواس کرنے والی کومل توچا والی سندریوں کا بھوگ کرنا ہے. میں تو آپ کے چرن کملوں پر اس لیے پرارتھنا کرتا ہوں کہ میں جنم جنمانتر اپنے ہدے کے انتر بھاگ میں ایک ماتر آپ کا سمرن کر سکوں. تاتپریہ منشیوں کی دو شرینیاں ہیں. دھیان سے سنیے گا, کوئی ایسا نہ سمجھیے کہ میں پاپی نہیں ہوں, میں نرک میں نہیں جاؤں گا, نہ مجھے سورگ کی رمنیوں کی کامنا ہے, وہ تو دیکھا نہیں. اس لیے آپ ہو یا میں, کوئی بھی, ہم نے دیکھا نہیں ہے اس لیے ایسا ابھی پرارتھنا کرتے ہیں. پرنتو یہ پرارتھنا ہی ہمیں بچا سکتی ہے, اپائی یہی ہے. تو ہماری پرستھتیاں ابھی تاتپرے میں بتاتے ہیں شیلا پربھوپاد جی. منشیوں کی دو شرینیاں ہیں, ناستک تتھا آستک. ناستکوں کو پورن پرشوتم بھگوان میں کوئی شردا نہیں ہوتی, جبکہ آستک کو بھگوان کے لیے وبھن ماتراؤں میں شردا ہوتی ہے. ہے نا, شروع ہوا ہم سب کا جیون, ہماری شردا کیسی ہے؟ وبھن ماتراؤں میں. ناستک اپنے ورتمان تتھا بھوت کال کے جنموں میں کیے گئے اسنکھ دشکرموں کے کارن شردا رہت ہوتے ہیں. ان کی چار کوٹیاں ہیں, نتانت بھوتک وادی, انیتک پاپی, نتانت مورکھ تتھا اپنی سانسارک ودوتا کے باوجود مایا دوارا بھرمت ناستک. ان چار کوٹیوں میں سے کوئی بھی پورن پرشوتم بھگوان میں کبھی بھی وشواس نہیں کرتا. ان کے چرن کملوں کی وندنا کرنا تو دور کی بات رہی. دوسری اور آستکوں کی بھگوان میں شردھا ہوتی ہے اور وہ وبھن ادیشیوں سے ان کی ستوتی کرتے ہیں. منشیہ کو ایسا آستک جیون سنیوگ وش نہیں پراپت ہوتا, پرتیوت وہ یہ ورتمان جیون تتھا ویگت جیون میں انیک پنیہ کرموں کو سمپن کرنے کا پرتیفل ہوتا ہے. ایسے پنیاتما بھی چار کوٹی کے ہوتے ہیں, ضرورت مند, وپداگرست, دیویہ وگیان کے جگیاسوں تتھا پرامانک دارشنک. ان میں سے انتیم دو ارتھات جگیاسوں تتھا دارشنک انیہ دو کوٹیوں سے سریشتتر ہیں, کنتو شدھ بھکت پنیاتماؤں کی ان چار کوٹیوں سے بھی کہیں اوپر ہوتا ہے, کیونکہ وہ دیویہ پد پر ستھت ہوتا ہے. دین پنیاتما اچھے جیون کے ستر کے لیے پرارتھنا کرتا ہے اور وپداگرست پنیاتما وپدا سے ابھرنے کے لیے پرارتھنا کرتا ہے. کنتو جگیاسو تتھا دارشنک ویکتی سانسارک سمسیاؤں کو سدھارنے کے لیے ایشور سے پرارتھنا نہیں کرتے, وہ انہیں یتھاروپ میں جاننے کی یوگیتا پانے کے لیے پرارتھنا کرتے ہیں اور وہ وگیان تتھا ترک دوارا ان تک پہنچنے کا پریاس کرتے ہیں. ایسے پنیاتما سامانیتیا تتو گیانی کہلاتے ہیں. ضرورت مند پنیاتما ایشور سے اپنی آرتھک سدھارنے کے لیے آرتھک ستھتی سدھارنے کے لیے پرارتھنا کرتے ہیں. क्योंकि उन्हें केवल इंद्र तृप्ति का ही ज्ञान रहता है। जबकि विपदा में फंसे लोग नारकीय जीवन के कष्टों से अपने आप को मुक्त करने के लिए याचना करते हैं। ऐसे अज्ञानी व्यक्ति मनुष्य जीवन के मूल्य को नहीं जानते। यह जीवन ईश्वर के परम धाम वापस जाने की तैयारी करने के निमित्त है। शुद्ध भक्त न तो जरूरतमंद होता है, न ही विपदाग्रस्त, न प्रयोगवादी दार्शनिक जो अपने अपूर्ण ज्ञान के बल पर ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करता है। शुद्ध भक्त सही स्तोत्र से ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करता है। यह स्तोत्र है उन सिद्ध पुरुषों की शिष्य परंपरा जिन्होंने प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में भक्ति की परंपरागत विधि का निष्ठापूर्ण अनुसरण किया है। अपनी अपूर्ण इंद्रियों के अनुभूति द्वारा ईश्वर की दिव्य प्रकृति को समझ पाना संभव नहीं है, किंतु ईश्वर के भक्त द्वारा की गई सेवा के अनुपात में शुद्ध भक्त के समक्ष स्वयं को प्रकट करते हैं। राजा कुलशेखर शुद्ध भक्त हैं। फलत वे इस जगत के प्रयोगवादी दार्शनिकों, पीड़ित व्यक्तियों या सकाम कर्मियों के मानदंडों द्वारा अपने को सुधारना नहीं चाहते। पुण्य कर्मों से संसारी प्राणी आध्यात्मिक साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर हो सकता है, किंतु भगवत भक्ति के क्षेत्र में व्यावहारिक कर्मों के पुण्य के फलों की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। शुद्ध भक्त निजी लाभ या हानि के संदर्भ में नहीं सोचता, क्योंकि वह पूर्णतया भगवान का शरणागत होता है। उसे एकमात्र भगवान की सेवा की चिंता रहती है और वह उसी सेवा में सदैव लगा रहता है। इस कारण उनका हृदय भगवान का घर होता है। चूंकि भगवान परम है, अतः उनमें और उनकी सेवा में कोई अंतर नहीं है। एक शुद्ध भक्त का हृदय भगवान की सेवा करने के विचारों से सदैव पूरित रहता है। यह भाव उसे गुरु के पारदर्शित माध्यम से प्राप्त होता है। पर प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से गुरु ईश्वर पुत्र हैं, अथवा दूसरे शब्दों में वे भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि होते हैं। उनके प्रामाणिक होने का प्रमाण ईश्वर में उनकी अविचल श्रद्धा है, जो निर्विशेषवाद की विपत्ति से उनकी रक्षा करती है। निर्विशेषवादी कभी भी प्रामाणिक गुरु नहीं हो सकता, क्योंकि प्रामाणिक गुरु के जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान की सेवा करना होना चाहिए। वह भगवान द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि की भांति भगवान के संदेश का प्रचार करता है, और इंद्रिय तृप्ति या निर्विशेषवादियों की संसारी तुतु मेमे से उसका कुछ भी लेना देना नहीं रहता। कोई भी किसी निराकार सत्ता की भक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि भक्ति में सेवक तथा स्वामी के माध्यम पारस्परिक निजी संबंध निहित रहता है। निर्विशेषवाद की विचारधारा में तथा कथित भक्त से भगवान के साथ तदाकार होने तथा अपने पृथक अस्तित्व को समाप्त करने की अपेक्षा रहती है। राजा कुलशेखर जैसे शुद्ध भक्त ऐसी विधि से बचने के लिए विशेषतया सावधान रहते हैं, जो उन्हें कहीं भगवान से एकाकार न कर दें। यह अवस्था अद्वंद्व अद्वैतता कहलाती है। यह तो मात्र आध्यात्मिक आत्महत्या हुई। भक्त के लिए मुक्ति के 5 प्रकारों में से अद्वंद्व सर्वाधिक गर्हित है। शुद्ध भक्त ऐसे तादात्म्य एकाकार को नरक जाने से भी बदतर समझकर उनकी भर्त्सना करते हैं। ओम अज्ञानं तिमिरांधस्य ज्ञानंजना शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। समय कम है। यहाँ पर राजा कुलशेखर बहुत सुंदर उपदेश देते हैं, और श्रील प्रभुपाद जी हमें क्रमबद्ध तरीके से भगवान के चरणों में जय जय श्री श्री राधा गिरधारी जी, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय, श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय। तो हमें श्रील प्रभुपाद जी अपने इस तात्पर्य के द्वारा हमें क्रम से हमें ले जा रहे हैं भगवान के चरण कमलों की शुद्ध भक्ति या सेवा की हो। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कह रहे हैं कि इस संसार में 2 श्रेणी के लोग होते हैं। एक होते हैं नास्तिक और एक होते हैं आस्तिक। तो नास्तिकों का वर्णन संक्षेप में करते हुए श्रील प्रभुपाद जी ये शिक्षा दे रहे हैं कि नास्तिक 4 प्रकार के होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के सप्तम अध्याय के 14वां और 15वां श्लोकों से नास्तिक और आस्तिकों की व्याख्या करते हैं। तो वो कहते हैं कि चार प्रकार के नास्तिक लोग कभी भी भगवान की शरण में नहीं आते हैं। भगवत गीता के सप्तम अध्याय के 14वां श्लोक क्या है? नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपधन्ते नराधमा मायया अपिहज्ञानम आसुरिम भावमाश्रिता। नमाम दुष्कृतो मूढ़ा। वो नंदप्राण प्रभु व्यवसाय से डॉक्टर हैं, लेकिन सब गीता के श्लोक मुकुंदमाला स्तोत्र सब याद करते हैं, अच्छे भक्त हैं। आप भी ऐसा बन सकते हैं, पूरा व्यस्त रहने के बाद भी ग्रंथों का अध्ययन जप वो सब कुछ करते हैं, आप भी कर सकते हैं, प्रेरणा लेनी चाहिए। इसलिए सत्संग समारोह होता है, एक दूसरे से प्रेरणा लेकर, एक दूसरे से प्रेरित होकर हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए ठाकुर भक्ति विनोद जी कहते हैं ना, एकाकी आमार नाही पाय बल हरि नाम संकीर्तने, कृष्ण से तुमार कृष्ण दीते पार तुमार शकति आछे, उहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दासे करुणा करी। तो वैष्णव के समूह सत्संग के लिए हम लोग ये सत्संग समारोह का आयोजन करते हैं। ये नहीं कि खाली दिसंबर के एंड में संत समागम करके ट्रैफिक जाम करो, अभी अभी होगा या तो हो चुका होगा मीरा भाईंदर में, हर दिसंबर में संत समागम करते हैं 2-3 दिन और फिर पूरा ट्रैफिक जाम करते हैं। संत समागम नियमित होना चाहिए। नित्यम भागवत सेवया भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्टति। तो नास्तिक चार प्रकार के होते हैं। एक तो जो नितांत अज्ञानी है, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा। दूसरा, ज्ञान नहीं होने के कारण बहुत ही अहंकारी हैं, अपनी भौतिक संपत्ति या बल या पद पे इतराते रहते हैं, तो इसलिए भगवान या भगवान के भक्तों का कभी सम्मान सत्कार नहीं करता, श्रद्धा भी नहीं होती उनको। तो इसलिए कहते हैं नरों में अधम, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। नर तो है, मनुष्य तो है, भगवान ने बुद्धि भी दी है, भगवान के द्वारा ही शरीर और सारी इंद्रिय संपत्ति शक्ति या पद वगैरह हैं, लेकिन वो सोचता है ये तो मेरे बलबूते से है, मैंने ये प्राप्त किया है, मैंने खुद इसको बनाया। तो इसलिए ऐसे लोगों को कहते हैं नरों में भी अधम, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। ऐसे नराधम कभी भी भगवान की शरण में न जाते हैं। मायया अपहृत ज्ञानम, क्योंकि उनका ज्ञान जो है माया के द्वारा अपहृत अपहरण किया गया है, उनका ज्ञान ही नहीं है। हमने कुछ देर पहले कहा ना कि ज्ञान और इंफॉर्मेशन में बहुत अंतर है, परंतु जो तफावत है, जो भेद है, बहुत पतली रेखा है। समझना कठिन होता है कि ज्ञान क्या है और इंफॉर्मेशन क्या है। हम लोग इंफॉर्मेशन को ही ज्ञान समझ बैठते हैं। जैसे मुझे किसी गली में पहुंचना है, किसी मकान में, तो मैं पूछूंगा भाई ये फलाना मकान कहाँ आया, तो नुक्कड़ पे खड़े कुछ जवान लड़के बोल देंगे महाराज इधर जाओ, ये ऐसे ऐसे दाएं जाओ बाएं जाओ, वो मकान आ जाएगा। तो वो उनका ज्ञान नहीं है, वो जो बता रहे हैं वो उनकी जानकारी है, वो उनकी जानकारी है, इंफॉर्मेशन माहिती है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान अंदर से आता है। तो अंदर का वास्तविक ज्ञान क्या है? प्रभुपाद जी बार बार लिखते हैं परम भगवान श्री कृष्ण को जानना, आत्म साक्षात्कार करना, अपने स्वरूप को जानना, मैं कौन हूं, वही ज्ञान है। वो ज्ञान ही ज्ञान है, बाकी इसके अलावा जितना भी ज्ञान है वो केवल इंफॉर्मेशन है, माहिती है। और वही ज्ञान को ज्ञात कराने के लिए ये भागवतम या अन्य ग्रंथ है कि ताकि वो ज्ञान हमारे हृदय में उद्भवित हो जाए, रिविल हो जाए, उद्भवित हो जाए हमारे हृदय में। तो इसलिए माय या अपिहत ज्ञानम, और इसके कारण वो क्या करते हैं, सदैव जैसे कृष्ण कहते हैं ना भगवत गीता में अहम मत्त सर्वस्य प्रभव, तो उनका भी ऐसे होता है, ऐ हम अहम मत्त सर्वस्य प्रभव, मैं ही सब कुछ करता हरता हूं, मेरे द्वारा ही सब कुछ होता है। कभी कभी हम लोग एक शब्द प्रयोग करते हैं कि ही इज थिंकिंग दैट ही इज समथिंग, परंतु ऐसे नहीं होता है, ही इज थिंकिंग दैट आई एम एवरीथिंग। समथिंग तो ठीक है, समथिंग तो दास बन सकता है, भगवान का दास बन सकता है, मैं कुछ हूं, तो क्या कुछ हूं किसी दिन समझ में आ जाएगा। एक ठोकर लगेगी रास्ते में, चलते चलते गिर जाएगा, बोलेगा मुझे एक सामान, एक साधारण ठोकर ने गिरा दिया, तो कुछ समथिंग समझना इतना बुरा नहीं है, बुरा है पर इतना बुरा नहीं है, पर आई एम एवरीथिंग ये बहुत बुरी बात है। तो ये क्यों समझता है ऐसा? माया अपिहत ज्ञानम, और इसलिए आसुरीम भावम आश्रिता। तो ये है, ये भगवान की शरण में कभी भी नहीं जाते। फिर उसके बाद श्री प्रभुपाद जी कहते हैं चार प्रकार के सुकृतिवान कौन से हैं। उसके बाद का श्लोक जोर से, चतुर्विदा भजन्ते माम सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत शर्भ। चतुर्विदा भजन्ते माम, चार प्रकार के सुकृतिवान लोग, चार प्रकार के पुण्यवान लोग, चार प्रकार के श्रद्धालु लोग श्री कृष्ण कहते हैं मेरी भक्ति करते हैं, मेरी शरण में आते हैं। तो चार प्रकार के लोग कौन है? चतुर्विदा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन। तो श्री कृष्ण कहते हैं ऐसे लोग बड़े ही सुकृतिवान हैं, चार प्रकार के लोग। तो कौन से हैं वो चार प्रकार के लोग? आर्तो अर्थार्थ जिज्ञासु ज्ञानी च भरत शर्मा। आर्तो माने जो बहुत दुखी पीड़ित हैं, बिजनेस में लोग लॉस हो गया, नौकरी छूट गई, बेटी की शादी नहीं हो रही है, बच्चे को पढ़ाने के फीस के पैसे नहीं है, इस महीने के बाद में अगले महीने राशन कहां से आएगा पता नहीं है, ब्लड प्रेशर शुगर बढ़ गया है लेकिन इलाज के पैसे नहीं है, पत्नी को भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुआ है पैसे नहीं है, बिजली कटने वाली है बिजली का बिल नहीं भरा है, भाड़े के पैसे नहीं है, इतना दुखी हो गया है ना। हम में से संसार में कई लोग ऐसी स्थिति में से निकले होंगे या देखे होंगे ऐसे लोगों को, है ना इतने कष्ट में लोग रहते हैं। तो आखिर में वो एकदम आर्तनाद करते हैं, पुकारते भगवान बचाइए, अब तो कुछ कीजिए। कोई कहेगा यहां से 248 किलोमीटर चलिए, चलकर जाते हैं, गुरुवार की काकड़ आरती भरेंगे, वो चलने लगता है, जो बताओगे वो करेगा, मगर भगवान अब तो बचाइए। कोई कहेगा बांद्रा वेस्ट में जाएंगे, बुधवार की प्रार्थना सभा भरेंगे, वहां भी चला जाता है। मैं नाम नहीं लेता हूं, आपको समझना है, सगड़े मुंबई कर आए है ना। तो ऐसे होता है, 33 करोड़ देवता कम पड़ जाते हैं पुकारने के लिए। एक बार एक नाव जा रही थी, बहुत सारे मुसाफिर थे, तो नाव में अचानक छेद हो गया और बड़ी तूफानी नदी थी और सारे संप्रदाय के सारे धर्म के लोग बचे थे, बैठे थे उसमें। तो जो हम लोगों की पार्टी वाले थे वो बोलने लगा, ये बचाओ वो बचाओ, वायु इंद्र चंद्र सूर्य वरुण यम कुबेर नाग संतोषी माता से लेके साईं बाबा तक सबको पुकारने लगे, तो सब डूब गए। अन्य दो पक्षों के लोगों ने एक एक को पुकारा, वो बच गए, बोले देखा तुम लोगों में आपस में ऊपर झगड़ा हो गया आकाश में, वो बोला हो जाएगा, वो बोला हो जाएगा, उसने पुकारा तो कौन जाएगा, बचा ही नहीं पाए, देखो तुम लोग सब डूब गए। उसने कहा अच्छा भाई, दोबारा नाव चली, बहुत बड़ी स्टीमर थी, बहुत बड़ी स्टीमर शिप, बहुत बड़ी, उसमें भी ऐसे हजारों लोग थे, तो उसमें भी सभी लोग थे, तो उसमें क्या हुआ, वैसे ही वो बड़ी शिप में भी छेद आ गया है ना, कोई बर्फ हिमशिला से टकरा गया, टाइटैनिक मान लो, तो टाइटैनिक जब टूट गया तो जो हमारे लोग थे वो सब एक एक को पुकारने लगे थे, एक एक आया लेके चले गए, लेकिन जो दूसरे दो पक्ष के लोग थे, हजारों लोग थे, एक एक को एक एक बचाया, बाकी सब डूब गए। इनके उनके पास एक एक है ना, तो ऐसे हमारी श्रद्धा को कभी डगाना नहीं चाहिए। आप समझे, श्रद्धा के विषय की यहां चर्चा हो रही है। तो ये जो भक्ति का ज्ञान है वो विज्ञान है, इसीलिए कृष्ण ने भगवद गीता के चौथे अध्याय में ही बता दिया ज्ञान विज्ञान सहितम। ये ऐसे खाली पोंगा पंडिताई की बात नहीं है कि पेट भरने के लिए अभी कुछ नहीं मिला चलो भगवान की भक्ति करो, ये भी ठीक है, ये दूसरे चरण का भक्त है, अर्थार्थी कृष्ण ने पहले ही कह दिया, आर्तो जो बहुत दुखी है, जो बहुत पीड़ित है, जिसके पास और कोई रास्ता नहीं है, भगवान हे हरि गजेंद्र के पास कोई रास्ता नहीं था बचने के लिए, हे हरि, द्रौपदी के पास कोई रास्ता नहीं था, भरी सभा में निर्वस्त्र किया जा रहा था। पांच महान बलशाली सशक्त महारथी अतिरथी पति चुपचाप मजबूर होकर बैठे थे, कौन बचाएगा आर तो? तो कैसे द्रौपदी ने कैसे पुकारा क्या क्या, हे गोविंद, हे गोपाल, हे दीन दयाल, हे मुरारी, हे मुकुंद, बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में आई हूं तेरी, है ना? अच्छी बात है। भागवतम में लिखा है दशम स्कंद में, बोलिए, शंख चक्र गदा पाणी द्वारिका निलय अच्युत गोविंद पुंडरीकाक्ष रक्षमाम शरणागतम। शायद हम लोग यहाँ आराम से बैठे इसलिए इसे बोलते हैं, वो सिचुएशन कुछ और होगी, तो उसने इसे बोला होगा, शंख चक्र गदा पाणी द्वारिका निलय अच्युत गोविंद पुंडरीकाक्ष रक्षमाम शरणागतम, शायद ऐसे बोला होगा। हम लोग तो आराम से बैठे, कोई लाजवाज जा नहीं रही है, तो आराम से गा रहे हैं। तो इसलिए ये क्या हुआ, आर्तो। फिर उसके बाद में अर्थार्थी, जिसको कुछ चाहिए, 15 रुपये के नारियल के बदले में उसको 15 करोड़ चाहिए। अर्थार्थी है ना, पहला तो है आर्तो, जिसका कुछ भी नहीं बचा है, भगवान है और कोई नहीं है संसार में, सब बिल बाकी है, अर्थार्थ। दूसरा होता है अर्थार्थी, 15 रुपये के नारियल 5 रुपये का हार और 5 रुपये का तेल, 25 रुपये में बजरंग बली से 15 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट। तो बजरंग बली बोले, वो मैं ही ना ले लूं, तेल लगा ले गया तेरा हार और नारियल। क्या करें, भगवान से सौदेबाजी हो रही है, प्रभु से व्यापार हो रहा है, हे प्रभु आप मेरा इतना काम कर दो तो मैं आपको ये अर्पण करूंगा, सौदा, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, है ना? कंपनियों के फॉर्म में लिखते हैं ना, ये बेनिफिट, ये बेनिफिट, ये बेनिफिट, और हम लोग लालच के मारे दौड़ते हैं सब बेनिफिट लेने, लेकिन नीचे फिर बहुत ही सूक्ष्म अक्षर में लिखते हैं, कितने चालाक है देखिए, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। लेकिन कृष्ण ने कभी नहीं कहा टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, आप चाहे आर्तो हो, जिज्ञासु हो, नराधम हो, पापी हो, राक्षस हो, जब भगवान को पुकारते भगवान दौड़ पड़ते हैं। जब जब विपत्ति पड़ी भगतन पर, नंगे पावन धाए सबसे ऊंची प्रेम सदाई। अगर प्रेम हो ना हो, भगवान को पुकारा, देर इज नो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, नेवर, कभी भी टर्म्स एंड कंडीशन में। लेकिन ये ठग लोग ऐसा करते हैं, अर्थार्थी लोग। तो फिर कृष्ण भी कहते हैं टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, तो उन्होंने भी लिख दिया भगवद्गीता में टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। कौन बताएगा भगवद्गीता में कृष्ण ने कहां लिखा है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई? बोलिए बोलिए, यस यस, ना 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 ना, सर्वधर्म, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से जितनी मात्रा में मेरी शरण में आएगा, मैं उतना ही उसको प्रेम करूंगा। तो कृष्ण ने भी, जब हम टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई लिखते हैं, तो कृष्ण ने भी लिख के दिया, पर बड़े बड़े अक्षरों में, उन्होंने एकदम सूक्ष्म अक्षरों में नहीं लिखा, चीटिंग नहीं किया, कृष्ण कभी चीटिंग नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो समझो जिस जीव के साथ कृष्ण ने चीटिंग किया वो जीव का उद्धार हो गया। तो हम लोगों का कैसा होता है कि अर्थार्थी, बहुत सारी इच्छाएं हैं, और फिर चौथा है जिज्ञासु, जिज्ञासु, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, ये सब कौन है, इनसे मेरा रिश्ता क्यों है, सुख क्यों भोग रहे हैं, दुख क्यों भोग रहे हैं, पीड़ित क्यों है, आनंद में क्यों है, ये तारे, ये ग्रह, ये नक्षत्र, ये आकाश, ये कहां से आए, बिजली कैसे आती है, किसी के पास जवाब नहीं है। तो जानने के लिए कृष्ण की शरण में आते हैं, साधुओं के पास जाते हैं, और ज्ञानी, तो ज्ञानी सोचता है ये तो बहुत ज्ञान का विषय है, मैं ज्ञान अर्जन नहीं करूंगा, ज्ञान की उपासना नहीं करूंगा तो मैं कैसे समझूंगा भगवान कौन है। अभी जहां हम लोगों का गौशाला है, सिन्हा जी का मंदिर है, वहां एक और एक आश्रम खुला साहिब बंदगी, कबीर पंथ के लोग हैं साहिब बंदगी, तो हम लोग बोलते हैं हरे कृष्ण, वो बोलते हैं साहिब जी। अरे साहिब जी बोलने से उद्धार होगा? फिर मुझे कहने लगे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों काल के प्रभाव के अंतर्गत हैं, तीन लोकों में हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवान शून्य भी नहीं है, निराकार भी नहीं है, चौथा लोक है, और पता नहीं क्या क्या बोलता था वो। मैंने कहा कभी भगवत गीता पढ़ी है, भागवतम पढ़ा है कभी, पुराण या उपनिषद पढ़ा है कभी? बोलते हैं नहीं नहीं ज्ञान तो अंदर से आता है। मेरा ही डायलॉग मुझे मार दिया। बोले ज्ञान तो अंदर से आता है, पढ़ने की क्या जरूरत है। बोले यही तो विशेषता है हमारे साहिब बंदगी की, हमारे यहां मूर्ख अनपढ़ आए जिन्होंने गीता देखा भी नहीं है, ऐसे लोग भी हमारे यहां आके ध्यान साधना कर सकते हैं। तो मैंने कहा जो एकदम बीमार हो गया, रुग्ण हो गया, बैठने लायक नहीं, वो क्या करेगा? तो बोलेगा वो साहेब जी करेगा। तो मैंने बोला वो तो कृष्ण तो साहेब ही है दुनिया का सबसे बड़ा, तो वही तो हम कह रहे हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, तो रुग्णम भी कर सकता है और बचपन भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है। तो ऐसे लोगों को बहुत बहुत भ्रमित, दिग्भ्रमित लोग हैं जिनका कोई दिशा नहीं है। तो ज्ञानी तो लोग सोचते हैं कि ज्ञान के द्वारा, और ज्ञान हो जाएगा तो हम ध्यान करेंगे, और ध्यान में पता नहीं अंदर कुछ गुदगुदी होता होगा, भगवान जाने, मुझे तो हमेशा नींद आती है। बोलते ध्यान में बैठ जाएगा, समाधि आ जाएगी, चौथे लोक में पहुंच जाएगा। मैंने कहा वो भागवतम में तो लिखा है 14 भुवन, तो हमारे यहां तो 14 मंजिल का है, टावर है, तेरा 4th फ्लोर में खत्म, वो तो रीडेवलपमेंट में जाएगा अभी। 4 मंजिल की मकान कहां बचेगी अब मुंबई में, वो सब मतलब वो रीडेवलपमेंट में जाएगा अगले जन्म में, वो साहेब जी करके कहीं कृष्ण कृपा होगी तो आएगा इस लाइन में, तो रीडेवलपमेंट ही हुआ ना, तो वो 4 मंजिल तो रीडेवलपमेंट में जाएगा। यहां तो टावरों की बात कर भाई, मुंबई शहर है। तो 14 भुवन, उसके बाद भागवतम के 10वें स्कंद में ब्राह्मण पुत्र की चोरी के अध्याय में, फिर बाद में 7 अंधकारमय प्रदेश, फिर विरजा नदी, फिर वैकुंठ, फिर वैकुंठ में एक एक धाम, देवी महेश हरिधाम श्रुतेषु तेषु ते प्रभाव निचया विहिताशयेन गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, गोलोक धामनि निज धामनि तले च तस्य देवी महेश हरिधाम श्रुतेषु तेषु ते प्रभाव निचया विहिताशयेन गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये तो कहां ऊपर गोलोक, उसके नीचे वैकुंठ हरिधाम, उसके नीचे महेश, उसके नीचे हरि देवी धाम, विरजा नदी, देवी धाम अर्थात ये प्रकृति भौतिक जगत, ये सब ज्ञान के द्वारा। लेकिन ये 4 प्रकार के सुकृतिवान लोग प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं, ये कोई एक जन्म की बात नहीं है ऐसे सुकृतिवान होना, ऐसे सुकृतिवान होना एक जन्म की बात नहीं है, इस जन्म का जब से याद है तब से लेके आज तक का, और अनेक पूर्व जन्मों में कई कई पुण्य किए हैं जाने अनजाने में, कई कई पुण्य किए हैं तब जाकर के हम लोग ये इस प्रकार की सुकृति के मार्ग पर चल पड़े हैं, और उसमें भी पहले अर्थार्थी। तो अर्थार्थी की व्याख्या क्या की है यहां पर कि हमें अर्थार्थी की पराकाष्ठा तक ले गए, अर्थार्थी की लॉटरी लगने से लेके रम्या राम मृदु तनु लता आनंदे नापिरंतुम, अर्थार्थी के विषय में हम लोग सोचते हैं कहीं से लॉटरी लग जाए, कोई जैकपॉट लग जाए, कौन बनेगा करोड़पति में चला जाओ या कुछ भी, तो वहां से लेके सुख भोग की इच्छाओं को यहां से लेके फ्लैट बंगलो मोटर गाड़ी के मालिक बनने से लेके जो स्वर्ग का वर्णन हुआ है, आप सब शायद जानते ही होंगे कि स्वर्ग में बच्चे का जन्म वहां स्वर्गवासी जब एकदम बूढ़े होते तब तब होता है। बचपन से लेकर युवा अवस्था तक कितना भी भोग विलास करे बच्चे नहीं जन्म लेते हैं। यहां तो बच्चे का जन्म रोकने के लिए बहुत सारे वस्तुओं का उपयोग करना पड़ता है, लेकिन वहां इतना भोग और इतनी सुविधा है कि बच्चे का जन्म बुढ़ापे में होता है और वहां सीजरिन नहीं होती है, सॉरी डॉक्टर साहब, वहां नॉर्मल होता है। तो और वहां अगर मुझे यहां से सामने जाना है तो चल के या कार में नहीं, प्लेन में, सबके पास प्लेन है, अपना निजी प्लेन, और वो प्लेन में कोई फ्यूल नहीं डालना पड़ता है, कोई तेल नहीं डालना पड़ता है, सब मंत्र से और इच्छा से चलता है। और वहां सब कुछ सोने चांदी हीरे मोती की वस्तुएं हैं, इतनी सुंदर स्त्रियां हैं, इतनी सुंदर स्त्रियां कि शायद मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस अर्थ, 1 करोड़ मिस अर्थ या मिस यूनिवर्स अपना सौंदर्य एकत्र कर ले, 1 करोड़ मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स, मिस अर्थ जो भी हो, वो अपना सौंदर्य एकत्र कर ले तो शायद स्वर्ग की एक साधारण अप्सरा होती है। ऐसी अप्सरा हमें फ्री में मिलती है, कोई काम नहीं करना पड़ता है, हमें कोई खेत फैक्ट्री इंडस्ट्री एजुकेशन नहीं दिखाना पड़ता है, बस इच्छा हो गई, हम युवा हो गए बचपन से, हमें वो अप्सरा मिल जाती है। खाने पीने कपड़े के लिए कोई काम नहीं करना पड़ता, पसीना नहीं बहाना पड़ता, सब फ्री में मिलता है। कौन नहीं जाना चाहता है? बोले नहीं नहीं यहां नहीं बोल सकते हैं, बाहर आओ तो बताओ। अगर मैं कहूं मेरे पास पास है टिकट है तो मालूम पड़ जाए, पहला टिकट तो मेरा है, फर्स्ट नंबर नहीं मिलेगा आपको, वो मेरा है। तो हमें स्वर्ग के विषय में पता नहीं है, लेकिन जो लोगों को स्वर्ग के विषय में ज्ञान के द्वारा पता चल गया तो वो अपनी इंद्रिय तृप्ति में पड़ सकते हैं। तो ये है अर्थार्थी, ये अर्थार्थी की पराकाष्ठा श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं। तो हम सभी अपने अंतर में जानते हैं कि मैं कहां हूं। आप सबको ख्याल आ गया कि हम कहां अटके हुए कृष्ण से दूर, हां या ना? सबको अपना अपना पता है, हां या ना? तो दो चार लोगों को ही पता है, तो बाकी सबको मेरा दंडवत प्रणाम, शुद्ध भक्त है। क्योंकि बोले कोई अर्थ में नहीं है, इच्छाओं में नहीं पड़े हैं। कितने लोग हां बोलना चाहेंगे कि हम सब कहां अटके पड़े हैं? हमको पता है हम सभी कहीं ना कहीं वासनाओं में, इच्छाओं में, कामनाओं में अटके हैं। अगर हम नहीं अटके होते तो आज हम कृष्ण से बातें करते हैं और हम इस शरीर में केवल कृष्ण कीर्तन कृष्ण भजन की सेवा कुछ नहीं करते और लोगों को कृष्ण 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 देते हम लोगों को, लेकिन हम सब अटके पड़े। अच्छा, यहां पर आर्तों की परम सीमा बताई, चरम सीमा, कि आर्तो दुखी पीड़ित, जिसका वर्णन हमने कर दिया कि बिल के पैसे नहीं है, खाने के पैसे नहीं है, बच्ची का ब्याह, वो सब देख लिया, लेकिन इसकी चरम सीमा, दुखी पीड़ित की चरम सीमा कहां है? तो यहां पर बताया ना कि ना हम वंदे तव चरणार द्वंद्व अद्वंद हेतु हो कुंभी पाकम गुरुम अपि हरे नारकम नापने तुम गुरुम अपि। हम ये आर्तों की चरम सीमा क्या है कि हमने बड़े से बड़ा पाप किया है, हमने बड़े से बड़ा अपराध किया है, बड़े से बड़ा हमने गलत काम किया। गुरुम अपि है ना, एक होता है लघुतम छोटा, एक होता है गुरुतम बड़ा। तो यहां पर राजा कुलशेखर क्या कह रहे हैं कि हरेर नारकम गुरुम अपि नापने तुम कुंभी पाकम, तो हमने इतने बड़े बड़े पाप किए हैं जाने अनजाने में कि हमारा निश्चित है कुंभी पाक में जाने के लिए, नरक में। जो लोग मांसाहार लोग यहां अगर बैठे हो या पहले भी मांसाहार किया हो या अभी भी करते हो, वो लोग जान लीजिए उनके लिए ये पता है एड्रेस नेक्स्ट लाइफ का, अगले जीवन का, कुंभी पाक नाम का नरक। वो कुंभी पाक नाम का जो नरक है, यमराज के नरक में 28 प्रकार के नरक हैं, गरुड़ पुराण में इसका वर्णन आता है, 28 प्रकार के। उन 28 प्रकार के नरकों में से एक नरक है कुंभी पाक। उस कुंभी पाक नरक में 28 मील इट मीन्स 1.625 किलोमीटर, एक मील माने 1.625 किलोमीटर, तो 28 मील लंबी चौड़ी और गहरी कड़ाई है, और उस कड़ाई में ابلتا ہوا تیل ہے. تو جن لوگوں نے وہ مٹن مچھی مانسار بوت کیا ہے نا, ان کو وہاں پکوڑا فرائی, کاندا بھجی وڑا پھاؤ, کاندا بھجی 10 روپیہ پلیٹ, وڑا پھاؤ 12 روپیہ پلیٹ. تو وہ کاندا بھجی کی طرح اس کو فرائی کیا جاتا ہے وہاں. ہر ریلوے اسٹیشن کے باہر ہے نا بورڈ, کاندا بھجی وڑا پھاؤ. تو وہ بھجی کی طرح اس میں فرائی کیا جاتا ہے کمبھی پاک. تو اپنا ایڈریس نوٹ کر لیجئے پلیز, یہ بھی ایک انفارمیشن ہے مہیتی کہ کمبھی پاک نام کے نرک میں جانا ہے. تو وہاں پر بھی راجا کل شیکھر کیا کہتے ہیں, ہے کرشنا, ہے کرشنا, میں آپ کے چند کملوں کی وندنا اس لیے بھی نہیں کرتا ہوں کہ میں نے جانے انجانے میں کئی پورو جنموں میں ایسے پاپ کیے ہیں, بڑے بڑے پاپ, جن کے دوارا میں کمبھی پاک نام کے نرک میں چلا جاؤں, اس سے بچنے کے لیے بھی نہیں کرتا ہوں. یہ شدھ بھکت کا وچار, یہ شدھ بھکت کا وچار ہے. لیکن میں آپ کو ایک بتا دوں, ایک آشواسن دیتا ہوں, کئی لوگ ڈر گئے ہوں گے من میں کہ یار کمبھی پاک تو جانا پڑے گا, اب کیا کریں. لیکن شریمد بھاگوت کے چھٹم اسکند میں, ہاں پربھو جی پنچم اسکند میں اجامل, پانچواں اسکند, پانچویں اسکند میں اجامل کی کتھا میں یمراج اپنے یم دوتوں سے کہہ دیتے ہیں, ساودھان, جو لوگ ایسا تلک کرتے ہیں نا, جو کنٹھی پہنتے ہیں اور ہرے کرشنا 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 ہرے ہرے, ہرے رام 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 ہرے, بہت زور سے آواز آئے. دیکھا ارتھارتھی کے ٹائم سب چپ کر کے بہ گئے, لیکن جب آرتوں کی بات آئی تو چوری پکڑ لی نا, کتنا زور سے بولے بنا بولے, کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ یہ ایڈریس میرا ہے, بولنا نہیں پڑا, کوئی آواز نہ آئی, وہ پریم سے کہو کوئی آواز نہ آئی, ایسے بولنا نہیں پڑا, بہت زور سے آیا, سب نے نوٹ کر لیا یہ ایڈریس تو میرا ہے. پھر سے ایک بار, ہرے کرشنا ہرے کرشنا کرشنا ہرے ہرے, ہرے رام 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 رام, واہ واہ, اس سے بھی زور آیا, واہ مزہ آ گیا, سب نے اپنا ایڈریس ابھی بولو سب کو. میرا ای میل آئی ڈی ہے www.kumbhipark@gmail.com, سب کو ای میل آئی ڈی دے دو. تو یہ ہماری اوستھا ہے. تو راجا کل شیکھر کہہ رہے ہیں, پربھو یہاں کے لوکل بھیل سے لے کے سورگ کی رمنی کے ساتھ رمن کرنے کا سکھ کے لیے نہیں بج رہا ہوں, یہاں کے دکھوں سے لے کر کمبھی پاک کے نرک کے دکھوں تک میں نہیں بھج رہا ہوں. ویسے یمراج نے کہہ دیا اپنے یم دوتوں سے کہ جن لوگوں نے ہرے کرشن مہامنتر لیا ہے نا, ان کی پرچھائی کو بھی مت چھونا, چاہے کتنا بھی پاپ کرے. اسپشٹ روپ سے یمراج نے انسٹرکشن دیا ہوا ہے کہ ان کی پرچھائی کو بھی مت چھونا. کوئی روگ سے پیڑت کروا دے گی میری پرکرتی مایا, یا شاید زیادہ سے زیادہ پشو یونی میں ٹرانسفر کر دے گی, کتا بلی سور نرک کا کیڑا آدی, لیکن نرک کا دکھ نہیں بھوگنا پڑے گا کہ کروت سے کاٹ رہے ہیں, گرم گرم پگھلا ہوا سیسا پلا رہے ہیں ایسے ہاتھ پیر ایسے باندھ کر, یا ویبھیچار کے فل سوروپ اگنی کے استری پروش کو آلنگن کرنا ہے, یہ سب پیڑائیں نہیں ہیں وہاں. بولے میرا بھکت کبھی نہیں ہو سکتا. تو اس لیے راجا کل شیکھر کی پرارتھنا کے ایک ارتھ یہ بھی ہے کہ کمبھی پاک کے لیے بھی پرارتھنا نہیں کر رہا ہوں, کیونکہ ہرے کرشن بول دیا ہے تو وہاں کے لیے بچنے کے لیے پرارتھنا ایکسٹرا کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ پرارتھنا میں سب کچھ آ گیا, ہرے کرشن مہامنتر میں سب کچھ آ گیا. پھر ہے جگیاسو. تو جگیاسو کے لیے شری پربھوپا جی اپنے تاتپریہ میں کہتے ہیں کہ وہ ڈھونڈتے رہتا ہے اور کئی جگہ بھٹک کر کے پھر انت میں شدھ بھکتی میں آتا ہے. پھر انت میں تاتپریہ میں شری پربھوپا جی کہتے ہیں کہ اب گیانی کی تھوڑی پریشانی ہے. گیانی کی چرم سیما یہ ہے کہ گیانی دیکھیے گیان مارگ سے چلتے چلتے کہیں بھٹک سکتا ہے, اور وہ کہاں بھٹک سکتا ہے؟ تو راجا کل شیکھر کہتے ہیں دوندوم ادوندو, دوندوم ادوندو, دوند کیا ہے؟ संसारिक बंधन, संसारी माया, उसमें हम फंस गए। मगर अद्वंद्व, अद्वंद्व की व्याख्या समझिए ध्यान से कि संसारी माया से तो हम उबना शुरू करते हैं, उठना शुरू करते हैं, ऊपर उठना। परंतु हो सकता है कि यह ज्ञान मार्ग भी कितना डेंजरस है, कि अगर हम यह ज्ञान मार्ग से गए कितना भयावह है। कि यहां पर राजा कुलशेखर तुरंत कहते हैं और उस श्लोक पर ही श्रील प्रभुपाद जी अपनी टीका में लिखते हैं कि कहीं वो मायावादी ना बन जाए। ये ज्ञानी की चरम सीमा देखिए, राजा कुलशेखर कितनी सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं कहीं वो मायावादी ना बन जाए। भगवान निर्गुण है, भगवान निराकार है, भगवान शून्य है, शून्य में से सब कुछ आया है। तो हम सब क्या बेवकूफ हैं जो इतने करोड़ों रुपए का मंदिर बना रहे हैं, इतने सुंदर वस्त्र अलंकार अर्पण कर रहे हैं, भोग नैवेद्य, कीर्तन कथा, उत्सव आदि 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 वगैरह वगैरह क्यों कर रहे हैं? क्या भगवान निर्गुण है, भगवान निराकार है? भगवान निर्गुण है, जरूर है, उपनिषद में लिखा है, वेद में लिखा है कि भगवान निर्गुण है। हाँ है, तो कैसे निर्गुण है? भगवान के गुण दिव्य है, भगवान के गुण सीमित या हम लोगों के जैसा दूषित नहीं है, इसलिए वेद में उनको निर्गुण बताया गया, निराकार। तो भगवान का कोई आकार ही नहीं, ऐसा नहीं है। ब्रह्म संहिता में कहते हैं यम श्याम सुंदरम त्रिभंग ललितम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजाम रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन। आगे नानावतारम करोद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं संभवत परमः पुमानयो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतस तदेव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जो संत है, जिनका हृदय पवित्र हो गया है, राजा कुलशेखर जैसे जो संत हैं, जो मीराबाई नरसिंह मेहता तुकाराम जैसे संत हैं, ऐसे संत क्या करते हैं? संत सदैव हृदयेषु हृदयेषु विलोकयंती देखते हैं। क्या देखते हैं? यम श्याम सुंदरम, श्री कृष्ण का, परमेश्वर का, ईश्वर का सच्चिदानंद स्वरूप। यम श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, अचिंत्य अर्थात हमारी चिंतन शक्ति से परे, अचिंत्य हमारी बुद्धि से परे। यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम। क्यों भगवान निर्गुण निराकार है? यही राजा कुलशेखर भगवान का नाम अता पता मां बाप का नाम सब कुछ देते हैं, जयतु जयतु। यस नंदन प्रभु, जयतु जयतु देवो देवकी नंदनोयम, देवकी नंदन है, देवकी का पुत्र है। जयतु जयतु वृष्णि वंशो प्रदीप, वृष्णि वंश उसका कुल क्या है? वृष्णि वंश। इसलिए कृष्ण को भगवत गीता में अर्जुन ने कहीं कहीं पर वार्ष्णेय कह के बुलाया है। कोई ढूंढ के बताओगे कृष्ण को अर्जुन ने भगवत गीता में वार्ष्णेय कह के कितनी बार बुलाया है? मधुसूदन, मुकुंद, अच्युत, केशव, ढूंढिए ढूंढिए कितनी बार अर्जुन ने बुलाया। या कृष्ण ने अर्जुन को अर्जुन के अलावा पार्थ, भारत, गुड़ाकेश, परंतप कितनी बार बुलाया? ढूंढिए, ढूंढ कर दिया है श्रील प्रभुपाद जी ने। एक किताब आती है, वो किताब नहीं बिकती है। अभी अभी जो सब आईआईटी आईआईटी सब बनते हैं, वो किताब लिखते हैं, वो सब किताब बिकता है। आई एम सॉरी टू से, मैं किसी की निंदा आलोचना नहीं करता हूं, पर श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को इस तरह से लुप्त मत कीजिए। प्रभुपाद ने वो लिखकर सब तैयार रखा है, हमें केवल पढ़ने की आवश्यकता है। लेकिन अब बुक स्टॉल पे अधिकांश आईआईटी आईआईटी सो एंड सो, प्लीज प्रभुपाद के ग्रंथों को, और ये प्रभुपाद के ग्रंथ का वितरण का महीना है, तो प्रभुपाद के ग्रंथों पर भगवत गीता, भागवतम, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम, उसको अधिक से अधिक वितरण करने पर बल देना चाहिए हम लोगों को। फिर जितने भी वैष्णव हैं, आईआईटी है या जो भी है, उनका किताब अवश्य पढ़ें, हम पढ़ें। भक्तों की अपनी स्वानुभूति है, कोई विरोध नहीं है, पर हमारे आचार्यों को पहले समझें। और कभी भूल से भी ये ना समझे कि आचार्य को समझने के लिए पहले ये समझा रहे हैं, ये गलत है नितांत। आचार्य ने सबका मानस समझ के ही लिखे हैं, आदि अनादि काल से यही परंपरा है। वेदव्यास महाराज ने क्या हम लोगों की कलयुग की परंपरा हमारा मानस नहीं समझाता? बिल्कुल समझा। तो इसलिए ये हाँ, ये जो ज्ञानी अद्वंद्व वो माया में फंस सकता है, भगवान को निर्गुण निराकार यम श्याम हाँ जयतु जयतु मेघ श्याम को मलांगो। और कृष्ण का वंश बताया, कृष्ण के माता पिता का नाम बताया, फिर उनके स्वरूप का दर्शन कराते हैं। जयतु जयतु मेघ श्यामल कोमलांगो, मेघ घनश्याम है और उनके प्रत्येक अंग कमल की पंखुड़ी के समान कोमल है। और फिर क्या कहते हैं, जयतु जयतु पृथ्वी भार नाशो मुकुंद, ये सारे पृथ्वी के समस्त पापों का भार नष्ट करने वाले और पापों का भार को नष्ट करके मुक्ति प्रदाता मुकुंद जिनका नाम है, कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका, ऐसे सी मेरा बारंबार। तो राजा कुलशेखर ने क्या कहा लास्ट में, भावे भावे हृदय भवने भाव ये यम भवंतम, हे भगवान इसलिए मैं उन ज्ञानियों के द्वंद में नहीं फंसना चाहता। द्वंद अद्वंद कुंभी पाक आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, ये सब में मैं नहीं फंसना चाहता हूँ। मैं केवल जन्मों जन्म तक आपकी शुद्ध भक्ति करना चाहता हूँ। और चैतन्य महाप्रभु ने भी यही शिक्षा दी हमें, क्या दिया, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये। देखिए भागवतम का श्लोक, राजा कुलशेखर का श्लोक, महाप्रभु की शिक्षा, सब एक ही होता है। इसलिए सदैव कहते हमारे गुरु महाराज कि साधु शास्त्र और गुरु एक ही बात कहते हैं और वही असली गुरु है। यहां पर श्रील प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में अपनी टिप्पणी में कहा है कि साधु वही है, सच्चा गुरु वही है जो भगवान के कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में आपको लगा, जो भगवान के विषय को छोड़ के अन्य बातें न कहे, वही असली साधु है, वही असली गुरु है और वही असली शास्त्र भी है जो भगवान को दिखाता है, जो भगवान को मिलाता है, जो भगवान की सेवा में नियुक्त करता है, बाकी सब बकवास है। इसलिए महाप्रभु भी कहते हैं न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतु की त्वयी। तो वो भी यही कहे, हमारे गुजरात के नरसिंह मेहता ने क्या कहा, हरि न जन तो मुक्ति न मांगे, मांगे जन्म जन्म अवतार रे, निज सेवा निज कीर्तन उत्सव निरखवा नंद कुमार, अंते मुक्ति जेनी दासी रे। क्या कहते हैं, मैंने कहा था ना शुरू में कि जो भगवान का भक्त होता है वो कवि बन जाता है और उनकी कविताओं में, उनके भजनों में, उनके अभंगों में, उनके पदों में, उनकी रचनाओं में भागवतम अपने आप उद्भवित होता है। तो उन्होंने क्या कहा, हरि न जन तो मुक्ति न मांगे, अर्थात जो हरिजन है, हरि के जन मतलब हरि, वो भंगी चमार वाले हरिजन नहीं हम सब हरिजन हैं, वो भी हरिजन है, हम भी हरिजन है, सब हरिजन है। तो हरि न जन तो मुक्ति न मांगे, मांगे जन्म जन्म अवतार। देखो नरसिंह मेहता 400 साल पहले हुए, वही बात कही, 800 850 साल पहले राजा कुलशेखर हुए, वही बात, 450 साल पहले तुकाराम जी, वही बात, मीराबाई सेम बात। ये परंपरा है, ये असली ज्ञान है जो अंदर से आता है। हरि ना जन तो मुक्ति न मांगे, मांगे जन्म जन्म अवतार रे, क्यों जन्म जन्म अवतार मांग रहे भाई, भगवत धाम जाओ, बोले कोई परवाह नहीं, नरक में भी जाएंगे, वहां सब नरक के पापी जीव जो तड़पते हैं ना, उन सबको हरे कृष्ण जपाएंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। इसलिए ये कारण एक भी है, इसलिए यमराज ने कहा यमदूतों से उनको मत लाना, नहीं तो यहाँ प्रचार कर देंगे तो मैं दंड किसको दूंगा, यहाँ हड़ताल हो जाएगी, कामकाज ठप हो जाएगा इसलिए बहुत डरते हैं भगवत भक्तों से, बोले इनको छूना मत, परछाई को भी मत छूना। तो इसलिए हरिना जन तो मुक्ति न मांगे, मांगे जन्म जन्म अवतार रहे। तो क्या करेंगे सब जन्म में, इस जन्म में स्कोडा नहीं मिली तो अगले जन्म में मर्सिडीज जितना ट्राई करूंगा यार, ट्राई 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 अगेन एंड अगेन यू विल सक्सेस अ डे। तो इस जन्म में स्कोडा तक या स्विफ्ट डिजायर नहीं मिला, अगले जन्म में इतनी मेहनत करूंगा कि मर्सिडीज आनी चाहिए, बेंटले कार आनी चाहिए। बेंटले जानते हैं, शुरुआत 2 करोड़ से होती है उस कार की, बेंटले का 2 करोड़ किया, बोले वहां तक पहुंचे नहीं। इसलिए जन्म जन्म अवतार नहीं चाहिए, निज सेवा। ठाकुर जी आपकी सेवा कीर्तन, निज सेवा कीर्तन उत्सव, उत्सव करने के लिए। और निरखवा, कितने सुंदर दर्शन है ना, तृप्ति हुई किसी को? तृप्ति हुआ राधा गिरधारी के दर्शन करने? ऐसे लगा घंटों 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 देखते रहे, बस देखते रहे, पी ले, अंदर उतार ले, स्कैनिंग कर ले, वीडियो शूटिंग कर ले अंदर आंखों के द्वारा, टाइम फिनिश। तो निज सेवा कीर्तन उत्सव निरखवा नंद कुमार रहे। ऐसे जो भक्त है उसको कहते हैं, उनके द्वार पर मुक्ति दासी बन के खड़ी रहती है। तो इसलिए राजा कुलशेखर यहां कहते हैं कि हे प्रभु, मेरा जो गर्भगुरु है ना, ये गर्भगुरु आपका है, पर मेरा गर्भगुरु यहां है। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, अपना गर्भगुरु यहां है, ये जो बोलता है वो करो, नहीं, इसकी सुनो। तो ये जो बोलता है ना, तो राजा कुलशेखर कहते हैं, भावे भावे हृदय भवने भाव ये यम भवंतम। प्रभु मेरे निज हृदय में आपके चरण कमलों को कब स्थापित करोगे? जन्मों जन्म में कृपया उसे स्थापित कीजिए, मुझे आपका दास बनाइए, मुझे आपका भक्त बनाइए। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे।
प्रश्न उत्तर की कोई गुंजाइश नहीं है शायद।